इस कार्यक्रम के सभी पात्र उनके नाम स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं तथा किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति घटना या स्थान से इनकी समानता एक संयोग मात्र है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति धर्म या समुदाय को आहत करने का नहीं है। भूत प्रेत और किसी भी अंधविश्वास को हम चैनल या कंपनी दावा नहीं करते और ना ही बढ़ावा देते हैं।
कहानी रोगी गाना पर कृष्ण काम के साथ आगे आइए। मैं कृष्णकांत एक बार फिर लेकर आ गया हूं कहानी रोकी सिर्फ गाना पर। खौफ की दुनिया में स्वागत है आपका। रूह से मुलाकात कराएं आपकी। धड़कने सलामत रखना। मैं रूह से मिलने का जिम्मा ले सकता हूं, आपकी रूह को बचाने का नहीं। वैसे मुलाकात तो आपकी भी कई बार हुई होगी उन एहसासों से जिन्हें आप खौफ कहते हैं। कभी सुनसान राह पे किसी के साथ चलने का खौफ, कभी कभी किसी की शक्ल अंधेरे में उभरने का खौफ, तो कभी बिस्तर के नीचे किसी के मौजूद रहने का खौफ। ये तमाम तस्वीरें हैं खौफ की, और आपने भी इन तस्वीरों की घुटन को कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। खैर, आपने जो भी तजुर्बा किया हो, मैं वो किस्सा सुनाता हूं जो केविन ने महसूस किया। केविन एक ऐसा बच्चा था जो बचपन से अपने दादाजी की गोद में पला बड़ा, खेला कूदा और समझदार बना। उसको अपने दादाजी से उतना ही प्रेम था जितना किसी रूह को अपने शरीर से। उसके पिता और दादाजी के बीच कुछ टकराव होते रहे जिनके बाद उसके दादाजी की मौत हो गई। वो दूसरी दुनिया के बाशिंदे हो गए, पर उनका जुड़ाव इस दुनिया में केविन के साथ बना ही रहा। केविन भी उनके साथ हंसता। कभी खेलता, उसे कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। कुछ साल बाद केविन के माँ बाप की मौत भी एक कार एक्सीडेंट में हो गई। यहीं से एक रोचक ने केविन के जीवन में प्रवेश किया। केविन अब हर वक्त रूहों की जानकारी लेने लगा था। वो शायद कुछ राज ऐसे थे जिनको कुरेद के कुछ समझना चाह रहा था। फिर एक रोज उसकी मुलाकात दादाजी से हुई और उसमें कुछ ऐसी बातें खुली जिनसे नाराज होकर केविन ने उनकी रूह को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। दादाजी की उस सवाल को जला के गंगा जल से मुक्त किया था केविन ने। वो उसकी पहली तांत्रिक विधि थी, पर अपने दादा के द्वारा दिए गए सिक्के को उसने अपनी ताकत बनाकर रखा था। जो उसे हर तरह की रूहों से लड़ने में मदद करता था। कुछ तो अनजान शक्तियां थीं जो केविन के साथ और उसके पीछे लगी पड़ी थी। इसके बाद केविन रूह चक्र के एक सफर पे निकला, जिससे वो कई तरह की रूहों से समझ पाता कि आखिर रूह होती क्या है। इस बीच उसकी मुलाकात कई रूहों से हुई। कुछ ने उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया, सिर्फ थोड़ा डराना चाहा। तो कुछ ने काफी तेज हमले भी किए। कई बार लगा कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो कई बार रूहों ने उसे धोखा भी दिया। केविन हर चुनौती को पार करता हुआ पैरानॉर्मल साइंस और अघोर साधना दोनों का ज्ञान लेता रहा, और अंत में उसे पता चला कि उसकी मां की रूह ही उसे खत्म करना चाह रही थी। पर अपनी सिद्धि और कई ज्ञानों की मदद से केविन ने उस रूह से भी मुक्ति पा लिया था। पर अब उसके पास एक और चुनौती थी, उसे अपने पूरे परिवार की आत्मा की शांति के लिए एक पूर्ण तर्पण विधि को अंजाम देना था, जो गंगा जी के किनारे ही होना था। अब इस सफर के लिए तैयार था केविन। केविन एक सफर पे निकला था। रास्ते में उसे कई और मुसाफिर भी मिले। सबसे बातचीत करता हुआ केविन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। उसको कई तरह के इंसान मिले, कुछ ज्ञान की बातें करने वाले तो कुछ मूर्खता की बात करने वाले। अक्सर सफर में ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है जो कुछ भी बोल जाया करते हैं। केविन शांत स्वभाव का इंसान था, पर सबको मुस्कुराता सा टालता हुआ जा रहा था। रूहों से इतनी बार मिल चुका था केविन कि अब हर आम शक्ल को बड़े गौर से देखा करता था। कभी कभी उसे यूं लगता था जैसे उसके सीट के पास वाला इंसान गायब हो चुका है। उसकी नींद कुछ उड़ी उड़ी से रहने लगी थी। केविन कई बार गाड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा होता, और सामने से गुजरते हुए जंगलों में कुछ शक्लें तलाश करने लगता। शायद ये उसके दिमाग का फितूर था। अंत में केविन आके अपनी सीट पे लेटा और सोने की तैयारी में आंखें बंद की। उसे यूं लगा कि उसके सीने पे किसी ने हाथ रखा है। केविन ने जैसे ही आंखें खोला, सफेद साड़ी में काली सी शक्ल लिए एक औरत की मुर्दा शक्ल उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। केविन उठना चाह रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। केविन ने काफी जद्दोजहद की कि उठ के कुछ बोले, पर यह मुमकिन नहीं हो पा रहा था। उसका शरीर जकड़ा हुआ था और उस औरत की शक्ल केविन के मुंह के करीब आ रही थी। केविन ने उसे झटकना चाहा, पर उस तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक उसका हाथ अपने जेब के पड़े सिक्के पे गया और वो चौंक के उठ गया। केविन ने एक डरावना सपना देखा था। पर अब वो गंगा नगरी पहुंच चुका था, और फिर वो आगे बढ़ा अपनी मंजिल की तरफ। एक पंडित जी से उसने विनती की कि उसके परिवार की आत्मा की शांति के लिए पूर्ण तर्पण कराया जाए। पंडित जी ने हाँ किया और दोनों घाट की तरफ बढ़ गए।
कहानी रूह की, गाना पर कृष्ण कांत के साथ।
आपका नाम?
केविन नाम है मेरा।
अपने परिवार के उन तमाम लोगों का स्मरण कीजिए जिनका आपको तर्पण करना है।
माँ, पापा और दादाजी, मैं आप सभी को बहुत प्यार करता हूँ, पर अब आप इस दुनिया को छोड़ के मोक्ष को प्राप्त कीजिए, प्लीज।
अपने परिवार जनों की कोई वस्तु लाए हो जजमान?
जी, ये लीजिए।
इन तमाम सामग्री को इस हवन कुंड में डालो और फिर इसकी राख की एक चुटकी गंगा जी में प्रवाहित कर दो। याद रखो, मुक्ति देते समय उनका स्मरण करना, उनको इज्जत देना, पर उनको साथ ना लाना।
जी पंडित जी, पर आपको कैसे पता चला कि मुझे क्या समस्या है?
सब रूह का चक्र है। आप जाओ और तर्पण करो।
पंडित जी की बात के कहे अनुसार केविन गंगा जी के सामने पहुंचा, अपने परिवार को पूर्ण तर्पण देने और फिर आंख बंद करके गंगा जी को नमन किया। उसने जैसे ही आंख खोली, उसे एक भयानक सी शक्ल गंगा जल में दिखाई दी। केविन ने मंत्र जाप किया और वो मुक्त हो गया। और अब पलट के चलने को हुआ तो उसे लगा मानो किसी ने उसके पैरों को जकड़ा हो। उसने अपने पैरों को झटका तो एक लाश सी थी। उसकी शक्ल पंडित जी से काफी मिलती थी। वो चौका और पंडित जी को देखा, वो वहीं बैठे थे। उन्होंने उसे शांत होने का इशारा किया। मन शांत होते ही वहां से लाश गायब ही हो गई। केविन समझ गया कि ये उसके परिवार को मुक्ति मिल चुकी है। वो पंडित जी के पास आया और उनका धन्यवाद किया। इस पे पंडित जी ने उसे कहा,
केविन, ये रूह चक्कर है ही ऐसा, जो फंस गया वो उलझा ही रहता है। तुम इसे बाहर निकल जाना। तुमने अपने परिवार को मुक्ति दे दी है, अब इन चक्रों में खुद को मत उलझाना। वैसे ये काम मुश्किल है, पर तुम्हारे अपने सुकून के लिए जरूरी है, वरना तुम्हें अब रूह चक्र में हर बार फंसते ही जाना होगा। अभी तो तुमने सिर्फ अपने परिवार को मुक्ति दी है, ऐसे कई और रूह तुम्हारा इंतजार करेंगी, और हर बार तुम बच ही जाओ जरूरी तो नहीं है। ये तो तुम्हारे दादाजी का रचा चक्र था, जिसको तुम समझ पाए, इसलिए आज मुक्त हो पाए हो। पर आगे अपना ख्याल रखना। ओम शांति, ओम शांति।
जी पंडित जी, मैं इसका ख्याल रखूंगा, अब मैं चलता हूं।
केविन अब खुश था कि उसने अपने परिवार को मुक्ति दे दी है। अब उसकी जिंदगी शांत रहेगी। उसने खुशी में अपने सिक्का उछाला। ये सिक्का अभी भी उसकी ताकत बनके उसके साथ था। केविन की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। केविन को अब तलाश है सुकून की। वो अपने घर पहुंचा और दरवाजा खोला। उसे यूं लगा कि कोई उसके साथ ही उसके घर अंदर आ गया हो। उसके पास मंत्र की ताकत थी। उसने अपना वहम दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया और पूछा,
कोई है?
कोई हो तो आवाज दे। लगता है मेरा वहम मुझे अब तक परेशान कर रहा है। अब तो वक्त हो चला है सुकून की नींद का। अब चल के आराम भी किया जाए। कई दिन बाद घर अपना अपना सा लग रहा है।
केविन एक सुकून की नींद की तलाश में जा रहा था, पर उसे नींद कैसे नसीब होगी, क्योंकि अभी तो उसके दरवाजे पे किसी के आने की दस्तक होने वाली है। कौन है ये? और आखिर हम कैसे जानते हैं केविन के बारे में इतना सब? केविन को उस पंडित की बात मान लेनी चाहिए थी। गंगा जी के पास से लौटते हुए वो सिक्का जो दादाजी और केविन की अटूट रिश्ते और ताकत की निशानी है, उसे छोड़ देना चाहिए था। पर अब तो दादाजी को मुक्ति मिल गई थी। वो दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। सुकून था जिंदगी में। पर एक बात बताइए कि अगर दादाजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी तो आपको ये कहानी कौन सुना रहा था? रूह सिर्फ आकार बदलती है, पर रहती आपके करीब ही है। सुनिए, उठिए, आपके दरवाजे पे भी एक दस्तक हो रही है।
कहानी रूह की, गाना पर कृष्णकांत के साथ,
क्रिएटेड बाय तारिक अहमद।